भक्ति साधक षडगुण। प्रथम, उत्साह। छह विषयों का वर्णन कर रहे हैं। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर् भक्ति ही प्रसिद्धति। इन छह विषयों का विवेचन अलग अलग रूप में होना आवश्यक है, अतएव यहाँ उत्साह के संबंध में लिखा जा रहा है। उत्साह किसे कहते हैं? उत्साह के अभाव में भजन क्रिया शिथिल पड़ जाती है। जाड्य, आलस्य या निर्वेद से शिथिलता पैदा होती है। आलस्य और जड़ता को ही जाड्य कहते हैं। उत्साह पैदा होने पर आलस्य और जड़ता दूर हो जाती है। चित्त धर्म के विपरीत अवस्था का नाम जड़ता है। अतएव जड़ता को शरीर या हृदय में स्थान देने से भजन किस प्रकार संभव हो सकता है? यत्न के अभाव में उदासीनता पैदा होती है। भक्ति योग का साधन अनिर्वन्य अर्थात उदास रहित चित्त से करना होता है। गीता में यही आज्ञा है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वन्त चेतसा। 6:23। इस श्लोक के भाष्य में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु महाशय ने कहा है, आत्मन्ये योगत्वा मननम निर्वेदस्त द्रहित चेतसा। जिस कार्य के लिए अपने को अयोग्य समझा जाता है उसी कार्य में निर्वेद उपस्थित होता है। इस प्रकार के निर्वेद से सर्वदा रहित होकर उत्साह पूर्वक भक्ति योग का साधन करना चाहिए। भक्ति योग के संबंध में श्रीमद् भागवत में इस प्रकार कहा गया है, निर्विन्न नाम ज्ञान योगे न्यासी नाम ही कर्मसु तेषव निर्विन्न चिंतनाम कर्म योगस्तु कामिनाम यद इच्छया मत कथा दो जात श्रधस्तु या पुमान ना निर्विन्यो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिरा। श्रीमद् भागवत 11:20-7:8। हे उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है और ना अत्यंत आसक्त ही है तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। परमार्थ साधन के प्रकार भेद, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। परमार्थ साधक चित्त की अवस्थाओं के तारतम्य अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, निर्विन्न चित्त वाले, अनिर्विन्न चित्त वाले और निर्वेद अर्थात आसक्ति रहित चित्त वाले साधक। योग भी तीन प्रकार का होता है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। निर्विन्न चित्त अर्थात कर्म और कर्म फलों से विरक्त पुरुषों के लिए ज्ञान योग श्रेयस्कर होता है। अनिर्विन्न चित्त अर्थात कामना युक्त पुरुष कर्म योग के अधिकारी हैं तथा अनिर्विन्न और अनासक्त पुरुषों को सौभाग्यवश जब मेरी लीला कथा आदि के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तब वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। तात्पर्य ये कि जो केवल जड़ीय कर्मों के प्रति विरक्त तो हो गए हैं किंतु जड़ अतीत अप्राकृत क्रिया की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सके हैं उनके चित्त में सिवाय कोरी विरक्ति के और रह ही क्या सकता है। निर्भेद ब्रह्म ज्ञान ही उनके लिए चरम प्राप्ति का विषय होता है। जिनको ना तो जड़ीय कर्मों के प्रति विरक्ति ही है और न जड़ अतीत चिन्मय क्रिया की अनुभूति ही प्राप्त है उनके लिए चित्त शुद्धि कारक कर्म योग के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। जिन्होंने जड़ीय कर्मों को अत्यंत हे समझ लिया है तथा जिन्हें चित्त क्रिया की अनुभूति भी प्राप्त हो गई है वे समस्त जड़ कर्मों के प्रति उदासीन होकर भी चिद अनुभूति उदित कराने के लिए कुछ कुछ जड़ कर्मों को सहायक के रूप में अंगीकार करते हैं, किंतु उन कर्मों में उनकी आसक्ति नहीं होती। भक्ति पर्व में जितनी ही अधिक चिद आलोचना होगी, जड़ विषयों में उतना ही अधिक मुक्ति मिलती जाएगी। जड़ विषयों से मुक्त होना भक्ति का अवंतर फल है। श्रीमद् भागवत में भक्ति योगों का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परितज्ञ अपनीश्वर ततो भजते माम प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुष्मनश्च तान कामान दुखो दुर्काश्च ग्रहण। श्रीमद् भागवत 11:20-27-28। काम अर्थात कामना से कर्म का, निर्वेद से ज्ञान का और भगवत संबंधी श्रद्धा से भक्ति का उदय होता है। भक्ति योगी का आचरण। श्रद्धावान पुरुष स्वभावतः समस्त जड़ कर्मों से विरक्त होता है। वे केवल उन्हीं कर्मों को उतनी ही मात्रा में अंगीकार करता है जो कर्म जितने अंशों तक भगवत श्रद्धा के अनुकूल होते हैं। शरीर नहीं रहने से भक्ति का साधन नहीं होता। शरीर की रक्षा के लिए जिन जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, उन दुखात्म काम कर्मों का परित्याग करने से शरीर की रक्षा कैसे हो सकती है और शरीर नष्ट होने से साधन संभव नहीं है। इसलिए साधारण लोगों के लिए दुख फल जनक कर्मों को हे जानकर निंदा करते करते अनासक्त भाव से भोगना तथा उनसे जीवन निर्वाह करते हुए दृढ़ विश्वास से युक्त होकर भक्ति योग द्वारा मेरा भजन करना ही कर्तव्य है। जो जड़ कर्मों के द्वारा प्राप्त विषय भोग रूप फल का अतिशय आदर के साथ भोग करते हैं, वे कर्म आसक्त कहलाते हैं। किंतु कर्म फल के प्रति अनादर का भाव रखकर उनमें स्थित भगवत भक्ति साधक वृत्ति का आदर करते हुए जो भक्ति के कर्मों को स्वीकार करते हैं, वे अनासक्त कहलाते हैं। ये लोग कर्मों में तो अनासक्त होते हैं, किंतु भक्ति के विषय में परम उत्साह से कार्य करते हैं। भक्ति साधकों की कर्म उन्नति। अब भगवत भक्ति के साधकों की कर्म उन्नति के संबंध में कहते हैं, प्रोक्तेन भक्ति योगेना भजतो मा असुक्र मने कामा हृदय नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते विद्येति हृदय ग्रंथि छिद्येति सर्व संशया शिनेन्तु चस्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि निरपेक्षं परं प्राहु निश्चय समन कल्पनम तस्मा निराशेषो भक्ति निरपेक्षस्य मे भवेत। श्रीमद् भागवत 11:20-29-30-35। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है। तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वदा क्षीण हो जाती हैं। जीवों के लिए यही निरपेक्षता रूप सबसे श्रेष्ठ और महान निःश्रेयस अर्थात परम कल्याण है। तात्पर्य ये है कि हृदय के अंदर अवस्थित काम रोग तथा अविद्या को दूर करने के लिए कोई दूसरी चेष्टा करना निरर्थक है। भगवत अनुशीलन रूप भक्ति योग का अवलंबन करने से अविद्या, काल, कर्म, जीवों का समस्त संशय और कर्म बंधन सब कुछ भगवान की कृपा से दूर हो जाता है, किंतु ज्ञान और कर्म से ऐसा नहीं होता। इसलिए अन्य अन्य कामनाओं और आशाओं का परित्याग कर निरपेक्ष होने पर हृदय में शुद्ध भक्ति उदित होती है। भजन क्रिया दो प्रकार की होती है, निष्ठिता और अनिष्ठिता। हम में कर्म का नाश करने की शक्ति नहीं है, ऐसा सोचकर हमें निरुत्साहित होना अनुचित है। भक्ति के प्रारंभ में ही साधक में उत्साह से युक्त श्रद्धा होनी आवश्यक है। भजन क्रिया दो प्रकार की होती है, निष्ठिता और अनिष्ठिता। साधु संघ में श्रद्धापूर्वक भजन करते करते निष्ठा उत्पन्न होने पर भजन क्रिया की संज्ञा निष्ठिता होती है। जब तक निष्ठिता भजन क्रिया आरंभ नहीं होती, तब तक अनिष्ठिता भजन क्रिया ही चलती रहती है। इस भजन क्रिया में उत्साहमय, घन तरला, व्यूढ़ विकल्प, विषय संग्रह, नियम अक्षम और तरंग रंगनी, ये छह अवस्थाएं दिख पड़ती हैं। अनवधान रूप अपराध। हरि भक्ति विलास में प्रमाद को एक प्रकार का नाम अपराध माना गया है। उसी ग्रंथ में प्रमाद शब्द का अनवधानता बतलाया गया है। श्री हरि नाम चिंतामणि ग्रंथ में उक्त अनवधानता के तीन भेद कहे गए हैं, उदासीनता, जड़ता और विक्षेप। जब तक इन तीनों अनवधानों से छुटकारा ना मिल जाए, तब तक किसी भी दशा में हरि भजन नहीं हो सकता। दूसरे समस्त अपराधों के दूर होने पर भी जब तक अनवधानता वर्तमान रहती है, तब तक हरि नाम में कदापि रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती। भजन के प्रारंभ में यदि उत्साह रहे और वह उत्साह यदि शिथिल ना हो जाए, तब नाम भजन में कभी भी उदासीनता, आलस्य या विक्षेप पैदा नहीं हो सकते। अतएव उत्साह ही समस्त भजनों का सहायक है। उत्साहमयी भजन क्रिया से ही क्रमशः निष्ठा उत्पन्न होती है। भजन क्रिया उत्साहमयी होने से अल्पकाल में ही अनिष्ठता धर्म दूर कर वह निष्ठा अवस्था को प्राप्त हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, आदो श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अर्थात श्रद्धा के उदय होने पर भजन में अधिकार उत्पन्न होता है। भजन अधिकार उत्पन्न होने पर साधु संग होने लगता है। साधु संग में भजन क्रिया प्रारंभ होती है। पहले पहल भजन में निष्ठा नहीं रहती, क्योंकि उस समय दूसरे अनर्थ हृदय को पीसते रहते हैं। उत्साह के साथ भजन करने से समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं। उत्साह ही श्रद्धा का जीवन है। श्रद्धा शब्द से विश्वास का बोध तो होता है, किंतु श्रद्धा का जीवन उत्साह ही है। उत्साह रहित श्रद्धा की कोई क्रिया नहीं होती। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि वे ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, किंतु उस विषय में उत्साह का अभाव रहने से उनकी श्रद्धा कार्य नहीं होती। अतएव साधु संघ के अभाव में उनका भजन नहीं हो पाता।